ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के सुबह के सत्र को हम कुछ ही क्षणों में प्रारंभ करेंगे। आशा है कि आप सबने ज्ञान सरोवर के वातावरण में अपने आप को आनंदित अनुभव किया होगा और कल के सत्र से बहुत सी बातें इस परिचर्चा की हम सबके सामने स्पष्ट हुई है। तो आज के सभी प्रमुख वक्ताओं को मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि हम समय पर इस सत्र को प्रारंभ कर सके। सर्वांगीण विकास का आधार शाश्वत योगिक खेती इस परिचर्चा के 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज के इस ओपन सेशन में हमारा विषय है जल संरक्षण से मृदा संरक्षण। तो बहुत ही सुंदर विचार इस अति आवश्यक विषय पर हम सबको यहाँ से डिलीवर होने हैं। तो हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि यह बहुत ही उपयोगी सत्र हम सब के लिए साबित होना है। तो मैं आज के प्रमुख मंच की शोभा ऐसे सभी सदस्यों को आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के हमारे अतिथि महोदय है भ्राता डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी। आप लखनऊ से पधारे हैं, आपका इस मंच पे हम आह्वान करते हैं। साथ ही विधायक श्योपुर भ्राता बाबू चंडेल जी, आप भी हमारे बीच में आज अतिथि के रूप में हैं। आपका भी हम इस मंच पे आगमन की प्रतीक्षा में हैं। ब्रह्मा कुमार विष्णु भाई जी महसाना, ब्रह्मा कुमारी प्रियंका बहन पुणे, और साथ ही हमारी अति आदरणीय ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी जी। ये समस्त महानुभाव आज के इस सत्र में इस मंच से अपने मनोमंथन की बहुत सुंदर बातें हमसे शेयर करेंगे। कृपया अगर आप सभी यहाँ उपस्थित है तो मंच पर पधारने का कष्ट करें। समय मूल्यवान है और जब हम इतने सुंदर ज्ञान सरोवर परिसर में हों, इतने सुंदर कार्यक्रम में हों, तो प्रत्येक क्षण का हमें आनंद सदुपयोग करना ही है, आनंद लेना ही है। तो कृपया बीच में जगह खाली न छोड़ते हुए आगे से सभी बैठें और मंच पर हम डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी का स्वागत करते हैं। पधारिए भाई साहब। ब्रह्मा कुमार विष्णु भाई जी, बहन प्रियंका जी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी जी का आह्वान करते हैं। आज की ये सुंदर संध्या हमें इन आध्यात्मिक ऊर्जा में कुछ ऐसा चिंतन देने वाली है जो चिंतन व्यक्ति से समष्टि तक हर किसी के लिए बहुत ही आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता जा रहा है। तो हम सभी अपने दिल के हृदय के द्वारों को भी खुला रख के और कार्यक्रम को संपूर्ण रूप से सुनेंगे और अपने आप को विषय से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो जब तक हमारी दीदी जी पहुंचते हैं, हम 2 मिनट प्रभु स्मृति के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ परमात्मा के आह्वान से करेंगे। वो प्यारा शिव बाबा हम सब के बीच में उपस्थित हैं, ऐसी अनुभूति करते हुए कार्यक्रम की शुभ आरंभ करेंगे। ओम शांति। अरावली के पर्वत श्रृंखला के बीच में यह पावन ज्ञान सरोवर परिसर और उसमें भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही कल्याणकारी सोच को रखते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार में आज के इस सुबह के सत्र में हम आप सभी का और विशेष हमारे मंचासीन प्रबुद्ध वक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। बहुत ही सुंदर विषय के साथ हम आज इस जगह पर एकत्रित हैं, जल संरक्षण से मृदा संरक्षण। जब कृषि एवं ग्राम विकास की बात आती है तो कृषि और कृषकों का संबंध ही मां धरती से है और उस धरती की पौष्टिकता, उस धरती की श्रेष्ठता, यही हर किसान की एक लक्ष्य भी रहता है और जीवन का आधार भी रहता है। उसमें भी भारत, जो कि आदिकाल से कृषि प्रधान रहा, इसीलिए शायद यहां पर धरती को मां कहकर पुकारा गया। और मां धरती की वंदना करते हुए हम सब ने अपने अपने जीवन में ये धरती मां के आंचल में बहुत सुख पाया है। बहुत ऋण है हम सबके ऊपर मां धरती का। और तब आज उस धरती मां की प्रमुख तत्व मृदा, मिट्टी को कैसे संरक्षित करना और उस संरक्षण के लिए आध्यात्मिक अप्रोच भी क्या हो सकता है, इसे कनेक्ट करते हुए आज के इस विषय को हमारे प्रबुद्ध वक्ता हमारे बीच में रखेंगे। मैं दोबारा आमंत्रित करूंगी अगर हमारे बीच में श्योपुर के विधायक बाबूजी चंडेल पहुंच गए हो तो कृपया मंच पर अपना स्थान लें। और आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी का भी हमें इंतजार है। आइए, जब जब भी ऐसे मंच सजते हैं जहां विश्व कल्याण की बात होती है, जहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः के संकल्प से चर्चा होती है, तो एक अलग ही ऊर्जा बनती है। और ऐसा ही आज इस भूमि पर हम सबको अनुभव करना है। मैं मंचासीन महानुभावों के इस सत्र में पधारने पर सम्मान के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगी, पुष्प गुच्छ और आज के सेशन के बेज अर्पित करेंगे और हम सभी भी इस सुंदर क्षण में तालियों के साथ अपनी ऊर्जा को दिखाएंगे। आदरणीय विधायक महोदय श्योपुर से हमारे बीच में पहुंचे हुए भ्राता बाबूलाल जी चंडेल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भ्राता डॉक्टर पंकज जी त्रिपाठी, निर्देशक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत आपका अभिवादन है। ब्रह्म कुमारी प्रियंका बहन, एग्रीकल्चर इंजीनियर और बहुत ही सुंदर इस क्षेत्र में काम करने वाली बहन हमारी, और ब्रह्मा कुमार विष्णु भाई जो पालनपुर से हमारे बीच में है। तालियां कुछ धीमी बज रही है। वैसे विश्व के किसी भी देश ने ताली बजाने पर और मुस्कुराने पर आज तक कोई टैक्स नहीं लगाया है। आप बिल्कुल मत घबराइए, जीएसटी में कोई प्रावधान नहीं है टैक्स का। आप मुस्कुराते भी रहिए और लगेगा कि आप सभी यहाँ हैं, हम सब साथ हैं और एक आनंद की अनुभूति होगी। धन्यवाद। सबसे पहले आज के विषय को शुरू करने से पहले हम सभी 2 मिनट के लिए कल भारत के उत्तर पूर्वी राज्य ओडिशा में एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 3 ट्रेनों के टकराने से लगभग 200-250 जितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हम उन सभी शरीर छोड़ने वाले और जो भी उस परिवार जन है उनके प्रति अपनी शांति के वाइब्रेशन देते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे। अपने स्थान पर प्लीज खड़े हो जाएं। 2 मिनट का मौन। ओम शांति। धन्यवाद। भारत देश 6 ऋतुओं वाला देश है। बहुत ही विशाल भूभाग है यहाँ पर और यहाँ उत्तर में विशाल हिमालय तो दक्षिण और पूर्व में विशाल महासागर है। सभी प्रकार की ऋतुओं का हम यहाँ पर अनुभव करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी भी पहुंच गए हैं। दीदी आपका भी बहुत बहुत मंच पे स्वागत है। बहने आपका पुष्प गुच्छों से और आज के बेज से अभिवादन करेंगी। आदरणीय लक्ष्मी दीदी सोनीपत से हमारे बीच में है। नॉर्दर्न इंडिया का एक बहुत सुंदर ब्रह्मा कुमारी का रिट्रीट सेंटर है जो सोनीपत स्थित है। उनकी आप डायरेक्टर हैं, सीनियर राजयोग टीचर है और बहुत से ब्रह्मा कुमारी के राजयोग सेवा केंद्रों का भी आप संचालन करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धरती या मृदा जिस पर हम अपना आशियाना बनाते हैं, जिसमें न जाने कितने जीव सुरक्षित बसते हैं, जिसकी उपस्थिति ही हम सबके पोषण के लिए आवश्यक अन्न जल आवश्यक अनाज फल फूल आदि की उत्पत्ति करती है। धरती की पौष्टिकता ही कृषि का मुख्य आधार है। परंतु एक आंकड़ा बताता है कि पिछले 150 वर्ष में समग्र विश्व में आधी से भी ज्यादा ऊपरी सतह है जिसमें पौष्टिकता है कार्बन्स है वो बहुत ज्यादा डैमेज हुई है जिसके बहुत से कारण है। तो इसलिए आज यह विषय यहाँ पर रखा गया कि जो जल के कारण लगातार बहती नदियां या अनेक प्रकार से जल का दुरुपयोग जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव जिसकी वजह से वनों का घटना और अनेक समस्याएं भविष्य में भी आ सकती है तो क्यों नहीं उस पर अभी से एक अच्छा प्लानिंग हो। इसके लिए इस विषय पर आज के हमारी प्रमुख वक्ता ब्रह्मा कुमारी प्रियंका बेन को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। प्रियंका बहन बैचलर ऑफ साइंस 2015 में आपने किया, मास्टर ऑफ साइंस 2017 में और परमाकल्चर डिजाइन कोर्स की आप विशेष एडवाइजर के रूप में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ी हैं और आप माधव यूनिवर्सिटी आबूरोड में भी विशेष टीचिंग में आपकी भूमिका है। और ब्रह्मा कुमारी इसका जो शाश्वत योगिक खेती प्रोजेक्ट है उसे आपने प्रैक्टिकल में धरा पर लाने के लिए गोल्डन एरा प्रोजेक्ट भी बनाया। वर्तमान समय में अमृतसर में और कच्छ में आप इस गोल्डन एरा प्रोजेक्ट के द्वारा कृषकों को प्रैक्टिकल में ट्रेनिंग देते हैं। एक बहुत ही अच्छी आप रीजनरेशन के लिए, रीस्टोरेशन के लिए काम करने वाली ऐसी युवा बहन है जिसको देख करके आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि एग्रीकल्चर की मास्टर होंगी, लेकिन इतना दिल से इन्होंने ये काम किया है। कुछ ही समय पहले यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में इजिप्त में जाकर भी उन्होंने इस समग्र प्रोजेक्ट को, जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा धरती संरक्षण या कृषि के बारे में या शाश्वत कृषि का चलाया जा रहा है, उसको भी आपने रिप्रेजेंट किया। तो आप एक बहुत विशिष्ट प्रतिभा की धनी है। मैं आह्वान करती हूँ बहन प्रियंका जी, अपने प्रैक्टिकल वर्क के अनुभव के साथ हम सब के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस साझा करेंगी। प्रियंका।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा माँ प्रकृति का सबसे पहले धन्यवाद। मंच पे उपस्थित हमारे डॉक्टर पंकज सर, फिर बाबू सर, हमारे दीदी लक्ष्मी बहन और गीता दीदी और विष्णु भाई जी, सभी सभी के लिए नमस्ते। और यहाँ पे उपस्थित हम सभी माँ प्रकृति के जल तथा भूमि तत्व के रक्षक सभी का फिर से इसाबू के ज्ञान सरोवर प्रांगण में स्वागत है। आज हम यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, जो कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग का एक इनिशिएटिव है, जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जो कि अपने भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और विश्व में सबसे ड्राइएस्ट प्लेस में एक प्लेस है। यहाँ पे ग्राम विकास प्रभाग का इनिशिएटिव एक छोटे से गांव से शुरू हुआ जिसका नाम भारापर है, और आप सब आश्चर्यचकित होंगे इसको सुनकर कि उस गांव की जनसंख्या केवल 90 लोग हैं। उस गांव में बहुत सारे लोग हैं, बट वो सारे जल की समस्या के कारण, मृदा की समस्या के कारण वो माइग्रेट हो चुके हैं मुंबई, अहमदाबाद और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में। तो ये इनिशिएटिव इस छोटे से गांव में शुरू करने का था, जिससे आज का टॉपिक है जल एवं मृदा संरक्षण। बट वहाँ पे आप कुछ भी शुरुआत करने जाओ तो लोगों के सामने एक ही समस्या है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम बाकी क्या करें। तो ग्राम विकास और ग्राम विकास कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, हमने 5 फरवरी 2022 को फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाकर एक प्रयोग स्टार्ट किया, जिसमें सात मुख्य प्रिंसिपल्स के आधारित गांव का रीजनरेशन और कम्युनिटी का रीजनरेशन दो चीजों के बिना असंभव है। एक एजुकेशन माना शिक्षा और दूसरा वेलबींग माना स्वास्थ्य। गांव में रहने वाले सभी के वेलबींग और उनको शिक्षा नहीं है कि उनके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको हम कितना सुचारू रूप से यूज करके हर समस्या का समाधान यहाँ जहाँ पे हम हैं वहाँ पे ही कर अपने गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो इससे ये शुरुआत हुई, जिसका विजन ही यही था कि कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। गांव में हर एक, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या किसी भी वर्ग का इंसान हो, उनके लिए हर स्तर पे उनकी फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, उनकी वाटर, उनके घर के लिए, गांव के लिए और उनके खेत के लिए वाटर अवेलेबिलिटी, तो इन सारे चीजों के लिए स्ट्रेटेजीज बनाना ये प्रमुख उद्देश्य था, और जिसके बहुत सारे सेक्टर्स में उसको डिवाइड किया था। उसमें से प्रमुख 8 सेक्टर्स ये है। ग्रासलैंड डेवलपमेंट, क्योंकि आप जानते होंगे कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे गायों की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन पानी के कारण वहाँ पे हर दिन टन टन चारा बाहर से मंगवाया जाता है, तो उसके कारण भी वो उसमें भी निर्भर नहीं है। तो इसलिए प्रमुख उद्देश्य ये था कि वहाँ पे गाँव में जाकर लोगों से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन हमारी गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए। तो वो प्रमुख उद्देश्य था कि वहाँ के ग्रासलैंड का रिस्टोरेशन, देन वाटरशेड मैनेजमेंट, सॉइल रीजनरेशन। हम बोलते हैं कि मृदा का संरक्षण करने के लिए हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, लेकिन मृदा एक ऐसा तत्व है जो ऑलरेडी 5 तटों से बना हुआ है। अगर हम सॉइल को डिवाइड करते हैं, सॉइल को आ जाते हैं कि कंपोनेंट कैसे आता है, उसमें एयर एलिमेंट होता है, वाटर एलिमेंट होता है जो कि 25-25% होता है, फिर आता है उसमें 5% ऑर्गेनिक कार्बन जिसको सेंद्रीय कर बोला जाता है, और फिर 25% आ जाता है मिनरल मैटर। अगर इसको हम अगर डीपली देखें तो पहले तो जल और वायु तत्व है ही, मिनरल मैटर बनने में जो प्रोसेस होती है उसमें अग्नि तत्व माना फायर एलिमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिससे रॉक्स का विदरिंग होकर सॉइल बनती है। फिर अपना ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन जो भी मैटर है, जो भी बायोमास है, उसका डिकम्पोजिशन होकर एक ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन बना जाता है। जो वो डिकम्पोजिशन प्रोसीजर में भी जाता है, उस प्रोसीजर में भी इन सारे पांच तत्वों का यूटिलाइजेशन होता है। माना इन पंच महाभूतों को हम अलग अलग देख नहीं सकते, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब हम ये इंटरकनेक्टेडनेस माना इंटरकनेक्टेडनेस विथ कोएग्जिस्टेंस इस रूप में देखेंगे तो हम प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे 8 इम्पैक्ट सेक्टर्स के ओर काम किया, जिसमें फिर किचन गार्डन, हर फैमिली के लिए एक किचन गार्डन, कम्युनिटी गार्डन, जो भी वर्ग वहाँ पे रह रहे हैं उनके सबके फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मोर देन 50-60 टाइप्स ऑफ नेटिव्स, नेटिव माना जो उस जगह के लिए बने हैं, और कम से कम पानी, जितने भी चैलेंजेस वहां पे आए वो उसमें सह करके वहां पे समृद्धि ला सकते हैं। फिर वहां की वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ऊपर भी, ग्रे वाटर जो भी निकलता है घरों से उसके ऊपर भी बनाना, पपाया और भी जो ट्यूबर क्रॉप्स हम लगा सकते हैं, जिससे और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बोला था एडुकेशन, तो कैपेसिटी बिल्डिंग महिलाओं के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए एक गार्डन इनिशिएटिव। ये कच्छ में पूरे एक साल में मोर देन 20 एकर्स का ग्रासलैंड अभी दिखाया हुआ है, तो अभी तक 100 एकर का ग्रासलैंड हो चुका है। फूड फॉरेस्ट माना जो प्रकृति में फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में कैसे अलग अलग लेयर्स होते हैं। हम खेत में जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, मोनोक्रॉपिंग करते हैं, सहजीवन नहीं होता है, एक ही एक पाक पद्धति यूज करते हैं। लेकिन जंगल एक ऐसी प्रणाली है जो हमें सिखाती है कि प्रकृति किन सिद्धांतों पर चलती है। प्रकृति का प्रथम सिद्धांत ही है डाइवर्सिटी। जहां पे डाइवर्सिटी होगी वो सिस्टम संतुलित सिस्टम होती है, और रेजिलियंट, रेजिलियंट माना सक्षम, जो कोई भी प्राकृतिक आपदा को झेल सकती है। तो ऐसी प्रणाली का या ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज वहां पे हमने किया, जो कि 20 एकर्स तक फूड फॉरेस्ट, और अब तक मोर देन 15,000 तक प्लांट्स भी लगाए गए हैं। अभी हम जब ड्राईलैंड की बात करते हैं तो विश्व भर में 46% ड्राईलैंड है, और अगर हम अपनी इंडिया की बात कर ले तो 65% एग्रीकल्चरल लैंड ड्राईलैंड में आ जाता है। तो वहां का मेन चैलेंज ही यही होता है कि वाटर स्केरसिटी। दूसरा मेन चैलेंज ये होता है कि पानी बड़े बड़े स्ट्रक्चर में है वो मोर देन 60-70% इवोपरेट हो जा रहा है। तो इन चीजों को हम कैसे पौधे लगाकर उस पानी को लॉक कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी सॉइल की स्ट्रेटेजी को यूज करके उस पानी को या बारिश से आने वाली एक एक बूंद को जमीन के अंदर रोक सकते हैं, या फिर उनका जो अभी ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे दो कंपेनियन है और उनका डायवोर्स हो गया, बनती नहीं है और उसके कारण कलह कलेश हो रहा है। सिमिलरली जल और पानी, जल और मृदा, एक बारिश हो रही है, बहकर पानी चला जा रहा है, लेकिन हमें अपनी सॉइल को इतना स्पंज की तरह बनाना है जो एक एक बूंद उसमें रुक जाए और वो रिजर्वायर बन जाए। दुनिया में जितनी भी रिवर्स है उससे ज्यादा पानी सॉइल में रुक कर रख सकता है। मतलब अगर उसका हम कैलकुलेशन करें एरिया, तो उसके 7 times पानी अपनी मृदा रोक सकती है। लेकिन हमें उस मृदा को देखना पड़ेगा, उसकी बीमारी को समझना पड़ेगा, और उसके कंजर्वेशन के लिए अलग अलग टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। दूसरी मुख्य बात होती है कि बैरन लैंड, जो खाली जमीनें हैं, जो ओवरग्रेजिंग के कारण बैरन बन चुकी है। फिर दूसरा होता है कि सलिनिटी, ज्यादा से ज्यादा बारी, ज्यादा से ज्यादा इरोजन होने के कारण, इवन सी वाटर का अंदर आने के कारण सलिनिटी इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये सारे ड्राईलैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट ये तो हुए चैलेंजेस प्रॉब्लम्स, हम क्या कर सकते, एक ही मूलभूत मंत्र से हम इन सब चीजों को सुचारू रूप से सॉल्व कर सकते हैं। एक की बारिश का जो भी पानी आ रहा है उसको स्लो करना है, दूसरा उसको स्प्रेड करना है, एंड तीसरा उसको स्टोर करना है। मतलब जो बहुत तेज बारिश हो रही है उसको हमें, मतलब दौड़ रही है उसको थोड़ा थोड़ा चलना सिखाना है, चलते हुए उसको रेंगना सिखाना है और फिर रुकना सिखाना है, ताकि वो एक एक बूंद उसकी माँ प्रकृति को समृद्ध बनाने के लिए हेल्प कर सकती है। अभी हमने जो अर्थवर्क्स किए उसको दिखाते हैं। उसमें मेजॉरिटी एक था सॉइल रिजनरेशन बाय यूजिंग कवर क्रॉप्स, दूसरा जो भी वाटर एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर होते हैं जैसे ट्रेंचेस है, नालियां, फिर होते हैं स्वेल। स्वेल एक नाली जैसी ही टेक्निक है बट वो फूड फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए, मतलब वो लोग बोलते हैं हमारे पास पानी नहीं, हम पौधे कैसे उगाए, पौधे ही पानी रोकते हैं, लेकिन पौधे लगाने के लिए पानी नहीं है तो क्या करें। तो दिस इज द वन टेक्निक फॉर ड्राई लैंड कि जिसमें स्वेल एक दिखाती हूँ मैं, वो नाली बनाकर उसके ऊपर हम चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम गांव में जाकर उसका वाटरशेड सर्वे करते हैं कि कहाँ पे बोरवेल से डिफंक्ट है, क्या क्या चैलेंजेस है, फिर उसके बाद जहां पे कम स्लोप है वहां पे वो पानी रोकने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, और उसका जो बंद है उसके ऊपर हम अलग अलग नेटिव प्लांट्स लगा सकते हैं। ओम शांति, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस, एक्चुअली मुझे लग रहा था कि आप सभी को दिख रहे हैं, सो मैं क्विकली फास्टली वो स्लाइड्स को दिखाती हूँ। हाँ, ये विजन है कि आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण के लिए कोई भी उसमें पीछे नहीं छूटना चाहिए, तो इसमें कम्युनिटी गार्डन, फूड फॉरेस्ट और जो भी स्कूल्स है उसके सामने स्क्वायर फीट गार्डन, एंड हर फैमिली के सामने होम गार्डन। एंड इसका एक मेन प्रिंसिपल है, जैसे थ्री वैल्यूज के ऊपर ये प्रोजेक्ट डिजाइन है, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, लव फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड ऑल क्रिएचर्स ऑफ नेचर, केयर सभी की, माँ प्रकृति की, तत्वों की केयर, एंड सभी जीवों की, ग्लोबल कम्युनिटी, एंड फेयर शेयर, मतलब जो भी हम जनरेट कर रहे हैं, जो भी फ्रूट्स है, जो भी इनकम या फिर जो भी प्रोड्यूस है वो सब में इक्वली शेयर होना चाहिए ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। तो ये इम्पैक्ट सेक्टर्स को बोला था, ग्रासलैंड, वाटरशेड, सॉइल रिजनरेशन, फूड फॉरेस्ट का डिजाइन करना, कम्युनिटी गार्डन, किचन गार्डन, और जो भी वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है उसको मैनेजमेंट, एंड एजुकेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग। ये सारा जो अभी बताया गया है कि मोर देन 100 एकर्स ऑफ ग्रास लैंड एंड फूड फॉरेस्ट एंड 15,000 ऑफ प्लांट्स गेट प्लांटेड इन वन ईयर, एंड ड्राई लैंड के चैलेंजेस तो हम सभी को ही पता है, क्योंकि वाटर स्कैरसिटी, ज्यादा इवोपरेशन रेट, बैरन लैंड, एंड जो सलिनिटी का इंक्रीज होना कि वाटर का टीडीएस बढ़ता ही जा रहा है, ये एक मुख्य समस्या है फार्मर्स की। ड्राई लैंड कैरेक्टरिस्टिक भी यही होता है कि जहां पे थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, जहां पे जैसे उदय जैसे टर्माइट्स, ये सारे इवोपरेशन रेट ज्यादा होता है। अभी ये मूल मंत्र जिससे हम जल को मृदा तत्व के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिसको कि हमें उसको स्लो करना है, उसको स्प्रेड करने के लिए स्पेस देना है और उसको सिंक या स्टोर होने के लिए जगह बनानी है। तो इसमें हम अर्थवर्क कर सकते हैं छोटे छोटे, बड़े भी जैसे डैम होते हैं, बट उन सारी चीजों में जाने से पहले हम अपने तरीके से फार्मर के लेवल पे, गांव के लेवल पर क्या जल संचय की विधियां अपना सकते हैं। सॉइल रिजनरेशन जो हमने देखा कि सॉइल एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है पानी को स्टोर करने की, दूसरा है पानी अपने अंदर वाटर स्टोर कर सकते, तो हमें पानी को कैसे बोना, उसको उगाना और हार्वेस्ट करना सीखना है, और सम यूनिक ड्राई लैंड स्ट्रेटेजीज जो हम देख सकते हैं, जिसको ओला एक यूनिक टेक्निक है। सबसे पहले वाटरशेड सर्वे, ये अभी बहुत इजी हो चुका है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप पे हमें डायरेक्टली टोपोशीट्स मिल जाती है, हम अपने गांव का लोकेशन डाल दे तो अपने गांव के पूरा कंटूर मैप आ जाता है, जिससे हमें पता चल सकता है कि हम कहां पे जलाशय बना सकते हैं, पानी का बहाव कैसे है अपने लैंड में भी और पूरे गांव में भी। ये स्वेल जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन कोई भी फार्मर कर सकता है, जिसको बोला जाता है इट्स लाइक अ यस शेप, एस शेप में है, नाली को डिजाइन करके उसके ऊपर एक बंड बनाया जाता है और उस बंड के ऊपर हम नेटिव ट्रीज, फ्रूट ट्रीज, कोई भी ट्रीज लगा सकते हैं। और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है कि जिसमें 3 दिन ही पानी रुक कर रखेगा, लेकिन ये साल भर अपना इम्पैक्ट दिखाता जाएगा कि पहले साल में उसका ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरे साल में और ज्यादा, तीसरे साल में और ज्यादा। और ये अलग अलग प्रदेशों में इसकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। जब ड्राई लैंड होता है तो उसमें हमें थोड़ा दूरी पर बनाना पड़ता है और उसका स्मॉल स्ट्रक्चर, और अगर हम वेटलैंड में है माना ठंड प्रदेशों में रह रहे हैं तो उसको हम बहुत कम दूरी पर और ज्यादा डीप बना सकते हैं। उसके पीछे आपको देख रहे होंगे सी शेप के स्ट्रक्चर्स, इसको बोला जाता है क्रिसेंट मून और अर्ध चंद्राकृति वाटर स्ट्रक्चर। ये कोई इंसान भी एक दिन में 7 स्ट्रक्चर बना सकता है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर 3,000 लीटर से भी ज्यादा पानी स्टोर करके रखता है और उसके बीच में हम ग्रासेस लगा सकते हैं जो ऐसे। सो जहां पे पानी नहीं है वहां पे भी वेजिटेबल्स या कवर क्रॉप्स या अदर ग्रासेस हम ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है सकते हैं माना ये सारी चीजें जो उस विलेज में हम लोगों ने की गांव वालों की मदद से। ये इसमें ट्रेंचेस है जो हमें कंटूर्स पे भी बनानी होती है और बाउंड्रीज में भी बना सकते हैं, और ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर 3500 लीटर तक वाटर स्टोर करता है। पॉन्ड्स के बारे में तो हम सभी को पता है, छोटे से छोटा पॉन्ड भी 2 से 3 गुना ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है अपनी पूरी जनरेशन में, और जितना उसको साल बढ़ते जाते हैं उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है। ये जोहर्ड स्ट्रक्चर्स वहां पे बनाए हैं, स्टोन पिचिंग लोगों ने ही, लोकल लोगों ने किया है। ये ओला स्ट्रक्चर जहां पे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है और कुछ नहीं कर सकते, वहां पे प्लांटेशन के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। अरब कंट्रीज में, राजस्थान के भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये टेक्निक यूज की है 2 साल पहले। तो इसमें एक क्ले पॉट होता है, क्ले पॉट को एक छोटा सा होल होता है जिससे पौधे को जितना पानी, एक्चुअली पौधे को पानी नहीं चाहिए होता है, उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, तो वो मॉइस्चर उसको अवेलेबल करा के देता है। तो ये एक सिंपल टेक्निक है जिससे अपने कुम्हार मतलब जो पॉटर्स होते हैं उनके लाइवलीहुड भी जनरेट हो जाता है एंड फॉरेस्ट भी बन जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट डिजाइनिंग फॉर द सॉइल, तो सॉइल का डिजाइनिंग जो हमने पहले बात की थी कि मृदा अगर स्पंज की तरह बन जाए तो हमें बाकी के स्ट्रक्चर्स करने की भी जरूरत नहीं है, और उसके लिए एक मैजिकल स्ट्रैटेजी है वो कवर क्रॉपिंग। कवर क्रॉपिंग माना जो जिस भी सीजन में हम जो भी क्रॉप लगाते हैं उसके सभी बीजों को एक प्रोपोर्शन में मिक्स करके हमें डालना होता है। जैसे हम ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप करते हैं या उसको लीला पडवास भी बोलते हैं हरी खाद, तो उसको हम ग्रो करते हैं तो इसके साथ क्या हो जाता है, टीमिंग विथ सॉइल, टीमिंग विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइक्रोराइजा फंगस है इन सारे के साथ वो जड़े क्या कर देती है, टीम कर देती है और एक स्पंज बना देती है जिससे वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर 1% ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ जाता है तो उससे 80,000 से 1,00,000 लीटर पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है 1 एकड़ सॉइल की। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी पौधे लगाना। ये नहीं सोचना कि पानी नहीं है पौधे नहीं लगा सकते, जितना पौधे लगाएंगे वो उतना बादलों में जो सस्पेंशन में वाटर है वो खींच कर लाएंगे मिनरल्स भी, और ये साइकिल कंप्लीट होती जाएगी। जाते जाते एक वायु तत्व के बारे में, जो ड्राईलैंड की एक खासियत ये भी है कि हवा बहुत तेज चलती है और वो जो भी पानी है, जो भी मॉइस्चर है जमीन के अंदर, वो उसको क्या कर लेती है, मतलब लेकर चली जाती है, उसको सुखा देती है, ताकि फिर हमें बार बार उसको इरिगेशन देना पड़ता है या पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट विंड ब्रेक बोला जाता है, जो हमारे संस्कृति में पहले से ही था, मेड पर पेड़, जो अभी सब जाकर एक ही एक क्रॉप हो गया है। बट अगर हम उसको 5 या 6 रोज में लगाते हैं, छोटे पौधे जो बायोफेंसिंग का काम करेंगे, फिर उसके ऊपर के बड़े पौधे जो फल देने वाले हो, नट्स हो या टिम्बर देने वाले हैं, फिर उसके बाद में जमीन के अंदर डालने वाले बायोमास प्लांट्स भी होते हैं। इन सब का अगर डिजाइन करके हम ये बाउंड्री में लगाते हैं, तीन रो में, चार रो में, पांच रो में, तो वो अपनी हाइट से 10 गुना 20 गुना जमीन तक का वो पानी लेकर जाना, मॉइस्चर लेकर जाना रोक देंगे, और साथ में एक्स्ट्रा इनकम देंगे, अपनी जैव विविधता बनाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जब तक जैव विविधता नहीं बनती है तब तक हम बाकी सारी चीजों को इमेजिन नहीं कर सकते। तो जल हमारे लिए बहुत स्पेशल है, ना केवल वो हमें जीवन देता है बल्कि वो हमारी मेमोरीज को कैरी करता है, वो हमारे विरासत को, हमारे कल्चर को कैरी करता है। हम जिस भाव से जल के साथ जुड़ेंगे वो उसी भाव से सूक्ष्म जीवों के साथ, पौधों के साथ, सबके साथ वो हमारा कनेक्शन जोड़ने में हेल्प करेगा। तो इसी इंटरकनेक्टेडनेस के साथ, कोएग्जिस्टेंस के साथ, सभी पांचों तत्वों के साथ हम टीम कर ले, और जब हमारी टीम स्ट्रांग होगी तो हम दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओम शांति।
थैंक यू सो मच। प्रियंका बहन के पास प्रैक्टिकल फील्ड के इतने सारे एक्सपीरियंस है, उसे उन्होंने सागर को गागर में समाते हुए हम सबके काम की बातें हमारे बीच में रखी हैं, और जो प्यार उनकी बातों में दिखाई देता है, जो किसी समय हम कहा करते थे कि धर्मो रक्षति रक्षितः, आज हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेंगी। तो आज ये समय आया है तो बहुत अच्छी स्पीच, धन्यवाद दोबारा कहेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं ब्रह्म कुमार विष्णु भाई जी के पास, जो हमारे बीच में पालनपुर से आए हैं। आप सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं गुजरात में AFPRO में, और आपने 28 सालों का ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, और 24 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी से भी कनेक्टेड है, और कृषि एवं ग्राम विकास विंग में आपने प्रकृति संरक्षण की दिशा में बहुत अच्छे काम किए हैं। किसान मंडल बनाना, उनके बीच में इन बातों को पहुंचाना, ये आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो अब हम आपसे सुनेंगे ब्रह्मा कुमार विष्णु भाई।
ओम शांति। आज के खुले सत्र में विधायक श्री बाबू चंडेल भाई जी, हमारी राजयोगिनी अध्यक्षा श्री लक्ष्मी बहन जी, डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी जो निर्देशक राज्य कृषि एवं प्रबंधन संस्थान लखनऊ से है, और हमारी प्रियंका बहन जी जिन्होंने अभी काफ़ी अच्छी तरह उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया, और हमारी आदरणीय गीता बहन जी के जो हमारी मंच सचिव है। तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, और ऑडियंस का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आज का जो सेशन है कि हम लोगों ने देखा है कि भाई जल और जमीन दोनों का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में किसी भी गांव का विकास करना हो या किसी भी देश का विकास करना है तो उसमें जल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ मिट्टी भी इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और अभी प्रियंका जी ने बताया कि बायोडायवर्सिटी, कि ये तीनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यहां देख सकते हैं कि जो रूरल इंडिया है उनके जो 5 रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो कुदरत ने हमें दिए हुए हैं, तो उसी में 3 जो रिसोर्सेज है उनका इंटरकनेक्शन है कि जल, जमीन और जंगल। जंगल मीन्स बायोडायवर्सिटी। ये तीनों चीजें ऐसी है कि जैव विविधता, वो तीनों इंटरकनेक्टेड है, और उसका जो उपभोग करते हैं उसमें जानवर और जल जन आता है, एक्चुअली हम लोग आते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो भी इम्पैक्ट हो रहा है, पिछली सीजन भी हम लोगों ने समर देखा हुआ है कि इस समर में हमने कितनी बारिश और कितने साइक्लोन देखे हुए हैं, तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हम लोग हैं। कुदरत ने अपनी जो सिस्टम थी उसको, हमने जो हमारे जो 5 नेचुरल रिसोर्सेस है उनको हमने जितना डिस्टर्ब किया है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोग भोग रहे हैं। तो उसकी वजह से कि हम लोगों को फिर से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको फिर से एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो इनकी आज की जो स्थिति है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो प्रेजेंट स्टेटस क्या है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो एफएओ का एक रिपोर्ट है कि हमारी जो जमीन है हम लोग 60 ईयर तक खेड़ सकते हैं, इसके बाद हमारी जमीन जो है खेड़ने लायक नहीं है क्योंकि हम लोग किसी का उत्पादन नहीं कर सकते। वो एफएओ के जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के विश्व लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है इसका कहना है, क्योंकि हमारी जो भी सॉइल है वो डिग्रेडेड हो चुकी है। आप भारत का चित्र देख सकते हैं, उसमें मोस्ट ऑफली रेड सॉइल दिखाई हुई है। तो उसमें भी यही है कि भाई हमारा 80% एरिया जो है सॉइल का डिग्रेडेड हो चुका है, कि हमारी जो मिट्टी है वो कट चुकी है, हमारी जो मिट्टी है उसमें जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है या न्यूट्रिएंट है इतना लॉस हो चुका है कि हम लोग ज्यादातर इसमें से अच्छा उत्पादन ले नहीं सकते। उसके जो मेन रीजन्स है उसको मोस्टली पानी के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला है कि मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी का जो कटाव है इरोजन जो होता है, तो इरोजन के ऊपर काफी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जितना हमारा मिट्टी का कटाव होता है फार्मर्स को कभी ये पता नहीं रहता कि मेरी मिट्टी कटती है। लेकिन जब आप किसी तालाब के किनारे जाते या किसी डैम आपने बनाया चेक डैम बनाया उसका 2 या 3 साल में पूरा वाटर जो स्टोरेज कैपेसिटी है खत्म हो जाता है, तो उसकी वजह से पता चलता है कि हमारे सॉइल से कितनी मिट्टी कट के उस डैम में आ गई। मेरा एक पिछले 20 साल पहले एक डैम पे मैं काम करता था, तो वो डैम 35 फीट भर गया था। तो आप देखिए कि जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाए के वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उसमें 35 फीट मिट्टी कट के आ गई, तो वो फार्मर्स के यहाँ क्या बचा। तो पहला है सॉइल इरोजन है, दूसरा है सोडिफिकेशन मीन्स सैलिनाइजेशन, कि हमारी जो भी मिट्टी है उसमें सैलिनिटी बढ़ रही है। जो भी समुद्र के किनारे के एरिया है या सॉल्ट डेजर्ट के एरिया है उधर भी मिट्टी में सैलिनिटी बढ़ रही है, कई जो एरिया है उसमें एसिडिफिकेशन भी बढ़ रहा है। जैविक कार्बन एवरेज हमारा जैविक कार्बन देखा जाए तो 0.5% के आसपास है, और मैंने अभी लास्ट ईयर एक रिसर्च पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया का, वहां का जो ऑर्गेनिक कार्बन है 8% है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। जैव विविधता मोस्टली जैव विविधता के बारे में देखा जाए तो काफी लॉसेस है हमारे लिए। मिट्टी का प्रदूषण, हम लोग जितना इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप कर रहे हैं उसकी वजह से भी मिट्टी खराब हो रही है, और फार्मर्स उसी मिट्टी में से जो पानी आता है इंडस्ट्रीज का उसी का यूज करते हैं या उसका ग्राउंड वाटर में रिचार्ज होता है उसी को यूज करते हैं, तो मिट्टी का जो प्रदूषण है वो भी बढ़ रहा है। फार्मर्स का एक है पोषक तत्वों का असंतुलन, क्योंकि जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट डालते हैं आज तक फार्मर्स को मैं खेत से कह सकता हूं कि हम लोगों ने जो भी इंजीनियर से साइंटिस्ट है इन्होंने एक ही चीज फार्मर्स को सिखाई कि एनपीके डालना है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। पहले हमारे पास पशु काफी थे तो हम लोग यूज करते थे, लेकिन मैंने काफी फार्मर्स को देखा हुआ है कि 15-15, 20-20 साल तक कोई सेंद्रीय ऑर्गेनिक मैटर डालते ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी काफी न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हुआ है। कॉम्पैक्शन ये सबसे बड़ा अभी ग्रीन हाउस गैसेस में इनका काफी इम्पैक्ट है, क्योंकि हम लोग पहले देखते थे तो 25 वॉर्स पावर के ट्रैक्टर होते थे, मैक्सिमम 35 वॉर्स पावर के ट्रैक्टर होते थे, और आज की सिचुएशन में देखें तो 72 वॉर्स पावर के ट्रैक्टर और 80 वॉर्स पावर के ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पैक्शन इतना बढ़ रहा है। क्योंकि पहले हम बैलों से खेती करते तो इतना कॉम्पैक्शन नहीं होता था, हमारे खेत में बायोडायवर्सिटी भी इतनी होती थी। और लास्ट है सॉइल सीलिंग, जो भी सॉइल की प्रॉपर्टी है, जनरली सॉइल की 3 प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन हम लोगों ने केमिकल डाल के हमारी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी थी उसको मोस्टली 80% खत्म कर दिया है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल का ऊपरी जो लेयर है वो सीलिंग हो जाता है, जैसे सीमेंट जैसा हो जाता है, तो ऊपर से बारिश गिरती है तो पानी नीचे ही जाता ही नहीं, सीधा ही नदी नालों में बह जाता है। भारत का आज का जो सिचुएशन है, हम लोग देखते हैं कि 54% एरिया जो है वो हाईली एक्सट्रीम है, वाटर स्केयर एरिया है। और हम लोग जो वाटर क्वालिटी की बात करें तो 100 मिलियन पीपल के पास शुद्ध पानी नहीं है पीने के लिए और खेती के लिए। खेती में आप देखा जाए तो जनरली 800 TDS से ज्यादा का पानी ही यूज हो रहा है। अभी प्रियंका बहन दिखा रहे थे 5200 TDS का पानी है उधर, तो 5200 TDS का पानी होता है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी हमें काफी सोचने की जरूरत है। और हमारे जो वेल्स है, मोस्टली जो भी वेल्स है ओपन वेल्स तो मोस्टली ड्राई होते जा रहे हैं, और जो भी ग्राउंड वाटर से जो हम लोग ट्यूबवेल का यूज करते हैं उसमें भी जो वाटर क्वालिटी है फ्लोराइड है या आर्सेनिक है, ऐसे जो खतरनाक केमिकल्स है हमारे शरीर में जाते हैं और हम लोगों को काफी बीमारियां का भी हम लोग देख सकते हैं कि उससे ज्यादा बीमारियां आ रही है कि जिसमें हार्ट बोन डिसीज ज्यादा हो रहे हैं। वाटर का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए क्यों है, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड की 80% आबादी है इंडिया में, लेकिन जो रिसोर्सेज है हमारे पास पानी के वो 4% ही है। तो इसमें देखा जाए कि हम हमारे पास जब 1947 में हम लोगों ने जब हम आजाद हुए तो हमारे पास 6000 लीटर क्यूबिक मीटर पानी था पर कैपिटा पर ईयर, लेकिन आज की जो डेट है तो हम लोग करीब देख सकते हैं 1200 लीटर पानी हमारे पास अवेलेबल है, और 2015 में तो देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 1000 से नीचे हम लोग क्यूबिक मीटर पानी का यूज करेंगे। इसकी थिंकिंग करेंगे, सपोज हमारे यहाँ वाटर टैंक होता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ था 5 लाख लीटर का वाटर टैंक है, तो ऐसे 2-4 वाटर टैंक है उसका इतना ही पानी हमारे लिए पूरे साल मिलेगा। तो उसकी वजह से हमें इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तीसरा जो एलिमेंट है बायोडायवर्सिटी। FAO का कहना है कि हम लोगों के लिए खाने के लिए 6000 प्लांट स्पीसीज है, लेकिन आज वर्ल्ड में फक्त 9 स्पीसीज ऐसी है जिसका हम लोग 66% यूटिलाइज करते हैं। उसमें सुगर कैन है, मेज है, राइस, व्हीट, पोटेटो, सोयाबीन, ऑयल पाम फ्रूट्स, सुगर बीट्स एंड कसावा। यही जो 9 स्पीसीज है उसका ही हम लोग मोनोक्रॉपिंग करते हैं, तो हमारी जो बायोडायवर्सिटी है 63% लॉसेस हो गया है। 11% जो बर्ड्स है उसका और जो 5% फिश एंड फंगीस है वो भी डिक्लाइन हो रही है। तो उसके ऊपर से हम देखा जा सकता है कि हमें इस तीनों एलिमेंट्स पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो उसको समझने के लिए हमें जल का क्या महत्व है, वैसे देखा जाए तो हमारी जो बॉडी है उसमें 3/4 जो पार्ट है वाटर होता है, लेकिन हम लोग पानी पे इतना ध्यान नहीं देते, हम लोग खाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि क्या खा रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या पी रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और उतना ही जो भी प्लांट स्पीसीज होती है उसमें भी करीब 65% पानी होता है, तो हम लोगों को पानी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सभी को पता है कि पानी की 3 अवस्थाएं होती है, बर्फ, वेपर और पानी। तो वेपर के बारे में बात किया जाए तो जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसमें वेपर का काफी बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे पास जो 2.5% या 3% पानी है क्लीन वाटर उसमें से भी हमारे पास अभी 0.02% जो पानी है हम यूज कर सकते हैं, बाकी का जो पानी है हमारे लिए कोई काम का नहीं। 97% जो पानी है वो समुद्र में पानी होता है, उसका करीब 35,000 से 40,000 TDS का वो पानी होता है, तो उसका हम लोग कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। मैंने काफी फार्मर्स के साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग किया हुआ है कि करीब हम लोग 80,000 फार्मर्स के साथ काम करते हैं अभी भी, और करीब 1000 विलेजेस में मैंने काम किया है। तो आपको मैं दिखा दूं कि किसी फार्मर्स को ये पता नहीं कि वाटर का जो जल चक्र है वो कैसे काम करता है, क्योंकि हमने फार्मर्स को यही सिखाया है सिर्फ कि आपके खेत में खाद डालिए और प्रोडक्शन लीजिए, कितना पानी डालना है, वो पानी कहां से आता है, उसका क्या क्वालिटी है, कभी हमने सिखाया ही नहीं। तो हमें ये जो जल चक्र है उसके बारे में हमें खुद को भी जानना चाहिए और फार्मर्स को सिखाने की बहुत जरूरत है। वैसे एक अनुमान है कि जो हम जो भी बारिश होती है इसका 77% बारिश समुद्र में गिरती है और 23% बारिश हमारे लिए जमीन पे गिरती है। तो जो 23% बारिश गिरती है उसी में से देखा जाए तो 60% जो बारिश है भूमि में चलती है उसमें से करीब 6% बारिश का हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और जो 20% जो बारिश है वो वैसे ही नदी नालों में चली जाती है, उसको बांधने की बहुत जरूरत होती है, लेकिन हम जो स्ट्रेटेजी है उसमें भी काफी दिक्कतें होती है तो उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। जो हमारा जो बारिश का जो सिचुएशन है अभी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ 45 इंच बारिश होती है, उसके कंपेयर में इसराइल में 5 इंच बारिश होती है, फिर भी हमारे पास कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। उसकी वजह से हम लोग इसराइल से आज बहुत पीछे है। हम दोनों एक ही साथ आजाद हुए हैं, इसराइल में 24 आवर्स पानी मिलता है, सभी चीजें एक्सपोर्ट होती है, पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, लेकिन हम लोग इतना बारिश होता है 45 इंच फिर भी हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। उसमें भी जून से सितंबर से लेकर हम लोग 75% बारिश हमारे लिए उपलब्ध होती है, उसमें 61% बारिश का जो पानी है वो हमारे भूगर्भ जल को रिचार्ज करने के लिए यूज होता है, हम लोग उसका यूज करते हैं, 87% जो पानी है वो खेती के लिए यूज होता है और 13% जो पानी है वो इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक यूज के लिए होता है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग फार्मर्स को 87% जो पानी है उसका हम लोग 50% जो पानी सेविंग करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हमारी जो भी समस्या है उसको हम लोग काफी हद तक सुलझा सकते हैं। और इंडिया में देखा जाए तो 51% एरिया जो बारिश आधारित है और 49% एरिया जो है सिंचित है। तो आज भी हम लोग देखा जाए कि जो 49% एरिया जो सिंचित है वो सिंचित एरिया में भी हमें देखने की जरूरत है। तो नमी संरक्षण कि जो भी बारिश का पानी होता है उसको किसी भी तरह से हमको रोकना है और उसको स्टोर करना है। तो उसकी वजह से हम लोग जो जमीन का जो पहला जो है सॉइल इरोजन है, जो मिट्टी का कटाव है उसको रोक सकते हैं, भूगर्भ जल को रिचार्ज कर सकते हैं, जंगल की जो कटाई होती है और बाढ़ जो आती है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और जो पौधे हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करा सकते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सा वाटरशेड दिखाया हुआ है, अभी पिछले लेक्चर में भी दिखाया हुआ था कि ये पूरा ये एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो जनरली हम लोग दो प्रकार के ट्रीटमेंट करते हैं, एक जो जहां पानी गिरता है उधर हम लोग ट्रीट करते हैं और जहां से पानी बहता है, सपोज जहां ड्रेनेज लाइन है, नाली है, जो स्ट्रीम है उसमें से जो पानी बहता है उसको ट्रीट करते हैं। तो दो ही पद्धति है कि दो ही पद्धति से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो पहली वाली पद्धति वो हर फार्मर्स कर सकता है, दूसरी वाली जो पद्धति है वो कम्युनिटी लेवल पे हम लोग कर सकते हैं। तो खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, ये हमारा वर्षा जल को सॉइल और वाटर को कंजर्व करने का पहले से ही एक सूत्र रहा हुआ है कि खेत का जो भी पानी आता है वो खेत को ही हम लोग उसको मैनेज करें। तो खेत का जो पानी है उसको कंजर्व करना है तो फार्मर्स लेवल पे हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो उसकी सिंपल सी टेक्निक बताई हुई है। तो ये जो सिंपल सी जो टेक्निक है जो फार्मर्स अपने खेत में फॉलो करता है तो उसमें ज्यादा लागत नहीं होती है और उसके बेनिफिट फार्मर्स ले सकता है। तो ये तो गहरी जुताई, तो गहरी जुताई जो है कि हम लोग 3 या 4 साल में एक बार कर सकते हैं, लेकिन आज की कंडीशन यह है कि फार्मर्स हर साल गहरी जुताई करता है। उसकी वजह से क्या है, कॉम्पैक्शन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से जो सॉइल की कॉम्पैक्शन से जो सॉइल का पानी का पेनिट्रेशन होना चाहिए कि इन्फिल्ट्रेशन होना चाहिए वो कम हो रहा है। दूसरा है कि बिन सीजन जुताई, जब बारिश आने वाले उससे 15 या 20 दिन पहले हम लोग समर में एक कल्टिवेशन करते हैं तो जो बारिश का पानी आता है उसको स्टोर कर सकते हैं और हम अच्छी तरह फसल ले सकते हैं। जो कंटूर है, जो समोच्च रेखा है, ढलान वाली जो भूमि है उसके ऊपर हम लोग खेती कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो भी पहाड़ ढलान है उसको हम लोग इसी तरह कंटूर फार्मिंग से भी खेती कर सकते हैं, तो उससे दो बेनिफिट होते हैं, तो मिट्टी का कटाव कम होता है, दूसरा नमी संरक्षण बढ़ता है। फार्म बंडिंग अभी देखा हुआ था कि दोनों जगह हम फार्म बंडिंग, किसी भी फार्म का हम बंडिंग करते हैं तो हम लोग अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। इंटरकल्चर ऑपरेशन अभी भी देखा हुआ है कि जो पहले की जो सिस्टम थी उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन में सिर्फ उपली मिट्टी को सिर्फ कटाव किया जाता था, लेकिन आज क्या है कि बड़े ट्रैक्टर्स आ गए तो पूरी मिट्टी को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो उसकी वजह से अंतर जुताई की वजह से क्लाइमेट चेंज पे भी काफी इम्पैक्ट हो रहा है और कॉम्पैक्शन पे भी काफी इम्पैक्ट हो रहा है। ढलान वाली जमीन है तो उसमें ढलान के अक्रोस हम लोग खेती कर सकते हैं। सॉइल टेस्टिंग है, हमारे सॉइल का कितना ऑर्गेनिक कार्बन है ये जानना बहुत जरूरी है, उसी हिसाब से हम लोग न्यूट्रिएंट बैलेंस करेंगे तो हम लोग अच्छी तरह मृदा परीक्षण कर सकते हैं। रेज बेड फार्मिंग, जहां बारिश ज्यादा होती है, अभी मैं देख रहा हूं कि पहले हम लोग जब भी डिजाइन करते थे 3 इंच पर आवर के हिसाब से डिजाइन करते थे, लेकिन आज की जो सिचुएशन है तो 1 ही घंटे में 6 इंच बारिश हो जाती है, तो उसी 6 इंच बारिश में हम लोग कैसे मैनेज कर पाए, तो उसकी वजह से हम लोग रेज बेड फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम लोग पानी को अच्छी तरह निकाल कर सकते हैं और हमारी फसल को बचा सकते हैं। ग्रीन मैन्यूरिंग जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया टेक्निक है। कंपोस्टिंग, उसको भी हम लोग जितना सेंद्रीय कार्बन ज्यादा सेंद्रीय पदार्थ का यूज करेंगे उतना हम लोग ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। मल्चिंग, जितना भी सॉइल पे जो पानी का इवोपरेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए मल्चिंग बहुत बढ़िया टेक्निक है। मल्च के बिना आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते या वो यौगिक फार्मिंग भी नहीं कर सकते, तो आपको मल्चिंग पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जीवंत पंक्तियां है, इंटरक्रॉप के बारे में ऑलरेडी पिछले वक्ता ने काफी अच्छी तरह दिखा दिया है। कंपार्टमेंट बंडिंग है, जहां काली मिट्टी है और हमको रबी फसल लेना है तो वहां पानी भर के रखते हैं और उसके बाद रबी फसल हम लोग अच्छी तरह ले सकते हैं, तो वाटर को स्टोर कर सकते हैं। मृत नाली है, जो जहां काप वाली जमीन है उसमें एक मृत नाली 5 या 6 आर के बाद बनाई जाती है, तो हम लोग उससे भी काफी अच्छा पानी का संग्रह स्टोर कर सकते हैं। तो ये था हमारे जो हम फार्मर्स है हम लोग हमारे खेत में कर सकते हैं। और आगे का जो है कि जो वाटर मैनेजमेंट के बारे में है कि जो गवर्नमेंट काफी इसके ऊपर काम कर रही है और ये कम्युनिटी लेवल पे हम लोग कर सकते हैं। तो कम्युनिटी लेवल पे जब हमको ये जल संग्रह करना है तो गवर्नमेंट की काफी स्कीम है, उसका भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मनरेगा का भी इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, हम लोग चेकडैम बना सकते हैं, परकोलेशन टैंक बना सकते हैं, छोटे वियर चेक वियर बना सकते हैं, कुएं और बोरवेल रिचार्ज कर सकते हैं, फार्म तालाब बना सकते हैं, बोरीबंद एक छोटा सा स्ट्रक्चर है उससे भी हम लोग कर सकते हैं, और हमारे घर में भी हम लोग रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं कि हम लोग शुद्ध पानी पी सकते हैं, हमारे गांव में और हमारे सिटी में भी हम लोग उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ये छोटे से स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं कि करीब 15-20 हजार रुपये खर्च करके हम लोगों ने एक जो रोड वाला जो जाता है कलवट, उसी जो पानी निकलता है नाले से उसी को सिर्फ 15 हजार रुपये खर्च करके एक छोटा सा बंड बना दिया है पक्का, उसमें से पानी जाता है तो पूरा वियर में पानी स्टोर होता है। और जो चेक डैम होता है उसको हम लोगों ने मिट्टी निकाल ली है। और लास्ट में मैं यौगिक फार्मिंग के साथ थोड़ा इसको इंटरकनेक्ट करूंगा, जो भी हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी या विश्व की जो भी संस्कृतियां है वो पानी के साथ जुड़ी हुई है, कि जहां भी होली वाटर होता था उस होली वाटर को हम लोग यूज करते थे और उस होली वाटर को हम लोग प्योर वाइब्रेशन देते थे, वहां के जो संत होते थे वहां संगीत बजाते थे, धुन होती थी और उनका जो मंत्रोच्चार चलता था, उसकी वजह से जो होली वाटर बनता था उसी पानी को हम लोग देते थे। तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, एक जापान के जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया है और उसके मैं थोड़े फिगर्स दिखाना चाहूंगा। जब भी हम लोग होली वाटर का यूज करते हैं तो ऐसे जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पानी हम पौधों के देते हैं, हम लोग पीते हैं, तो उसका इम्पैक्ट इसी तरह जो होता है, तो उसकी वजह से हमारी जो फसल है उसमें भी अच्छी तरह हम लोग देख सकते हैं। और ये लव और हिट का लास्ट पिक्चर है कि हम लोग देख सकते हैं कि भाई हम लोग भी पॉजिटिव थिंकिंग करके हमारे पानी को लव से और हेट से देते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है। तो थैंक यू, टाइम वैसे कम है तो मैं अपना जो लेक्चर है अभी यहाँ खत्म करता हूँ। सभी को धन्यवाद, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता विष्णु भाई ने। मिट्टी के संरक्षण के द्वारा जल बचाना जो कि हम सबके लिए अनिवार्य होता जा रहा है, बहुत ही विस्तृत और बहुत ही अच्छी अनुभव युक्त बातें कही, पुनः आपका धन्यवाद करते हैं। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पंकज जी त्रिपाठी जो कि हमारे बीच में लखनऊ से आए हैं, आज के अतिथि महोदय हैं, निर्देशक है राज्य कृषि प्रबंध संस्थान लखनऊ में। आपने वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम किया है और आप डायरेक्टर हैं इस समय, और नेचुरल फार्मिंग और साथ ही सोइल टेस्टिंग, सोलार आदि सभी मानव उपयोगी कार्यों में आपने अनेक विध सेवाएं दी है। एक सृजनात्मक सोच रखते हैं, आज हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश से पहुंचे हैं, हम बहुत बहुत स्वागत के साथ आपको सुनना चाहेंगे भ्राता डॉक्टर पंकज जी त्रिपाठी। वक्ताओं से मेरा नम्र अनुरोध है कि नेक्स्ट सेशन के कारण समय पर अपनी बात को पूरा।
धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी। आज अरावली के इस पवित्र क्षेत्र में स्थित ज्ञान सरोवर के इस प्रांगण में उपस्थित विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हमारे कृषि के वैज्ञानिक गण, अधिकारी गण, किसान बंधुओं, मंच पर उपस्थित आदरणीय ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहन जी, प्रियंका बहन जी, विष्णु भाई शर्मा जी, सप्तम मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम सर्वांगीण विकास का आधार शाश्वत यौगिक खेती पर अवसर प्रदान करने, प्रतिभागिता करने के लिए मुझे जो अवसर मिला इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं, व्याख्यापित करता हूं। कल के उद्घाटन सत्र में मनीषियों का, चाहे सरला बहन जी हूं चाहे निर्मला बहन जी हूं, कल जो दिशा प्राप्त हुई हमें और जो ज्ञान कल कुछ प्राप्त हुआ है सुबह भी, बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज का विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जल संरक्षण से भूमि संरक्षण, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और अब क्या हमें करना है, क्योंकि जो बदलती जलवायु परिस्थितियां हैं जिसका प्रभाव पूरे विश्व में भी हम देख रहे हैं, हमारे भारत में भी इसका प्रभाव हम लोग देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम भी है फिर भी वह स्थिति नहीं आ रही है। बारिश इतना कम समय में इतना ज्यादा बारिश हो रही है कि बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। आज इस विषय पर हम समवेत हुए हैं चर्चा करने के लिए। अभी पूर्व वक्ता प्रियंका ने, भाई बहन प्रियंका ने और भाई विष्णु जी ने विस्तृत रूप से चर्चा की कि भूमि संरक्षण के आवश्यकता क्या है, कैसे इसमें करेंगे और जल के महत्व को पर भी आपने पूरी चर्चा की। मैं थोड़ा सा ध्यान अलग हट करके आपका आकर्षित करना चाहूंगा। जल के महत्व को बताने की आवश्यकता मैं समझता हूं नहीं है कि जल ही जीवन है। मात्र 0.002% जल का ही प्रयोग हम आपस खेती या अपने उसके लिए प्रयोग कर पाते हैं जो नदियों झरनों में मिलता है, लेकिन भूमि जिसके बनने में हजारों वर्ष लगते हैं, ढाई मिलीमीटर मृदा का कण तैयार होता है तो हजारों वर्ष लगते हैं, इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। और थोड़ा सा शाश्वत खेती से जोड़ता हूं, मात्र लगभग 70-75 वर्षों की का अनुभव यदि आप देख लें तो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आई पहले हम खेती कैसे करते थे, और जब एक कल्टीवेटर आया, कल्टीवेटर पहले जुताई का यंत्र था, पहले हम लोग बैलों से जुताई किया करते थे, फिर कल्टीवेटर आया, कल्टीवेटर के बाद रोटावेटर आया, और रोटावेटर के बाद और भी उससे नई मशीनें आ गई, जुताई के नए यंत्र आ गए, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का प्रयोग शुरुआत हुई, यूरिया से, डीएपी, फास्फोरस, जिंक, और आज तमाम नई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। लेकिन उसका प्रभाव पंजाब में आपने देखा कि कैंसर ट्रेन चलने लगी और सब लगभग सभी चर्चा का विषय। फिर क्यों ऐसा हुआ, क्या मैं इसको भूमि संरक्षण से क्यों जोड़ूंगा, यदि मृदा का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसका कारण हमारी कुछ गलत प्रैक्टिसेस। या क्या चल जाएगा, क्या हमारा प्रेजेंटेशन चल जाए तो चला दें, यहां से चल रहे, यहां लगा हुआ है किसी और का देख लें। थोड़ा सा आपका ध्यान जल क्या है इसके विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। जो मुख्य कारण बने भूजल स्तर घटने के, इसका एक सबसे बड़ा कारण बना कि जो हमने खेतों में जुताई की प्रैक्टिसेस ऊपर के लेयर पर, हमने पहले कल्टीवेटर किया फिर रोटावेटर आया, आज हार्ड लेयर का निर्माण हमारे क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्र में जहां भी है, मैक्सिमम देखें तो लगभग 6 से 8 इंच नीचे, 9 इंच नीचे हार्ड लेयर डेवलप होती चली गई। और उसका कारण जिससे कि पानी नीचे नहीं जा रहा, शहरीकरण भी एक मुख्य विषय आया है। और इसका परिणाम अभी विष्णु भाई जी चर्चा कर रहे थे कि जल की विषाक्तता और लवणीकरण काफी तेज हुआ, पंपिंग सेट लगाने के जो अलग छोटी बातें हैं, और पानी में जो आर्सेनिक, कैडमियम, फ्लोराइड, निकल, क्रोम की सांद्रता जो बढ़ती चली गई, जो जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए भी कठिनाई
मंत्री चली गई है। जो उपायों का प्रश्न है कि जल संरक्षण के लिए हम क्या उपाय करें, संक्षिप्त में यहां पर मैंने इन बिंदुओं को रखा है कि परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण और खेत तालाब। खेत तालाब विशेष करके मैं अपने प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, जहां पर केवल एक या दो फसलें, एक ही फसल ली जा पा रही थी, वहां पर बंडिंग, बहुत बड़े बड़े खेत जिनका स्लोप तो है और मिट्टी पानी बहता है, जितना बरसात का पानी है मैक्सिमम बह जा रहा था क्योंकि मेड़बंदी नहीं। तो वहां पर एक योजना उत्तर प्रदेश में संचालित की गई, वह है खेत तालाब योजना, जिसमें किसानों से अपेक्षा की गई कि अपने ही जो खेत है उनका, उसके एक दसवें हिस्से पर, अपने जो सबसे जहां पर सबसे ज्यादा पानी ढाल आ रहा है उस पर खेत तालाब बनाए। और खेत तालाब का परिणाम वहां पर जो मिला है हम लोगों को, बहुत छोटे छोटे तालाब, और इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित की है। योजना कोई भी चले, यदि उसमें जन सहभागिता, केवल सरकार की योजनाएं चलेंगी तो उसे, केवल सरकारी कर्मी यदि उसमें काम करेंगे तो उतने सफलता नहीं मिलती। इसीलिए इस योजना में जन सहभागिता जोड़ी गई, और जन सहभागिता में किसानों को कहा गया कि आप खुद करें, हम आप स्वयं व्यवस्था करें, हम आपका साथ देंगे। और इसमें उत्तर प्रदेश में विशेष सफलता मिली है खेत तालाब योजना की बना करके, जहां पर कि वहां पानी का संरक्षण हुआ, और पानी के संरक्षण से न केवल स्वास्थ्य मृदा का स्वास्थ्य बचा बल्कि वहां उत्पादकता भी वृद्धि हो रही है। खेतों में मेड़बंदी और गहरी जुताई, इस विषय पर अभी डॉक्टर उन्होंने चर्चा डॉक्टर विष्णु ने पूरी चर्चा की है, इसलिए मैं उस पर बहुत नहीं जाना चाहूंगा। ये जो कारण हैं, जैसे अभी प्रियंका जी कह रही थी कि वास्तव में कहां से शुरुआत होती है, मजा जैसे बारिश होती है बूंद के, वर्षा की बूंद से जो सबसे पहले शुरुआत होती है, फिर इसके बाद दूसरा चरण इसका शुरू होता है, चाहे स्प्रे सीट योजन के रूप में, फिर वह रेल बनती है, रेल से फिर नाले बनते हैं, और नाले से फिर स्टीम कटाव बड़े बड़े होते हैं। इस रूप में भी प्रदेश में कई जगह दिखाई पड़े हैं। जो तीन हम लोगों ने हमारे जो हम लोगों ने उपाय बताते हैं जल संरक्षण से मृदा संरक्षण के लिए, उसमें तीन मुख्य उपाय जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। एक ग्रीष्मकालीन जुताई, जिसकी यदि खेतों की में गहरी जुताई कर दी जाए तो निश्चित रूप से नमी का संरक्षण होगा और उससे हम पानी को, वर्षा जल को रोक पाएंगे। कंट्रोल क्रॉपिंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग की जा सकती है। अभी विष्णु भाई इसको फरो खेती के विषय में बता रहे थे, यह भी बहुत ही सफल रहा है। और मल्चिंग तो बहुत ही अच्छा है, जब मल्चिंग कराएं। ये कुछ उदाहरण हैं हमारे क्षेत्र में जहां बंडिंग करा करके अच्छी फसल हमने ली है। ये भी हमारे यहां प्रदेश में जनपदों में किया गया है पेरिफेरल बंडिंग। लेवल जहां खेत लेवलिंग करके लेजर लैंड लेवलर का प्रयोग करके जहां पर लेवलिंग कराई गई वहां पर एक बहुत अच्छी क्रॉप हमारे यहां ली जा रही है। बेंच टेस्टिंग का भी यह कार्य किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि पहले जो स्थिति थी खेत की वह बिल्कुल खराब था, अब उसी में बना करके अच्छी फसल इसमें ली जा रही है। वाटर नालों पर जो नाले हैं उन पर चेक डैम बना करके पानी को रोका जा रहा है जिससे कि वाटर रिचार्जिंग भी हो रही है। और ये कुछ स्पिलवे के उदाहरण हैं। लास्ट में मैं 2-3 बिंदु रखना चाहूंगा। प्रदेश में विशेष करके उत्तर प्रदेश में दो तरह के सॉइल की कठिनाइयां, एक बहाव के कारण और दूसरा था खेतों का ऊसर होना। अब एक समस्या हुई उत्तर प्रदेश में विशेष करके, नहरें तो आई लेकिन नहरों का सीपेज पूरा प्लान नहीं बना जिसके कारण काफी क्षेत्रों में ऊसर का प्रभाव चलना और ऊसर के प्रभाव के कारण भी हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ सॉयल, जिसको वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में काफी अच्छे से रिक्लेम किया गया है और रिक्लेम करके उनको सुधारा गया, वहां पर अच्छी खेती की जा रही है। तो जिसमें किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराई गई थी और किसानों की सहभाग छोटे छोटे समूह बनाकर वाटर यूज ग्रुप बनाकर के उनको वहां पर जिप्सम का विशेष प्रयोग कराया गया और उसका अच्छा लाभ मिला। इसलिए अनुभव ये कहता है कि सॉयल कंजर्वेशन की जो भी एक्टिविटीज की जाए उसमें जन जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ जन सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए जिससे कि अधिक लाभ मिलेगा, जो कि संस्थान यहां कर भी रहा है। जो भी योजनाएं सॉयल कंजर्वेशन से संबंधित हमारी चलाई जा रही हैं उनका प्रचार प्रसार बढ़ावा दिया जा रहा है। और वर्षा आधारित जो हमारे क्षेत्र हैं वहां विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र, वहां पर मेड़बंदी के कार्यक्रम पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है। हाँ, एक प्रयोग जो अब बहुत सफल रहा वो है दलहनी फसलों का, यदि मेड़ों के पर जो मेड़ हैं उन पर दलहनी फसलों को लगा विशेषकर अरहर की क्रॉप लगा करके अच्छा लाभ मिला है और करने की आवश्यकता भी है। एक महत्वपूर्ण कारण आया जो नालों में सिल्ट के ज्यादा हो जाने के कारण उनकी सफाई की भी थोड़ी आवश्यकता है जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार हम लोग भूमि संरक्षण के कार्यों को कर रहे हैं। एक हमारे पास वीडियो था वो चल नहीं पा रहा है सर, खेत तालाब का हमारे कुछ सफल वीडियो थे, इस समय आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। तो आवश्यकता है अपने किसानों को, अपने क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भूमि संरक्षण के विभिन्न उपायों के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जल संरक्षण के माध्यम से भूमि को संरक्षित करना, भूमि मृदा के स्वास्थ्य को संरक्षित करना, इस क्षेत्र में संस्थान में जो विस्तृत कार्य किए जा रहे हैं विशेष करके शाश्वत यौगिक खेती के माध्यम से, मैं इन सभी का हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि हमें और भी सीखने को मिलेगा जिससे कि हम इसको और कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज जी त्रिपाठी ने। अपने विस्तृत प्रेजेंटेशन से मुख्य बातें हम सबके बीच में शेयर करते हुए विषय को बहुत ही अच्छा स्पष्ट किया है कि जल संरक्षण से भी अधिक मिट्टी का संरक्षण कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हजारों सालों के बाद ये मिट्टी बनती है। तो हम सभी यहाँ पर ये संकल्प लेते हैं। देश के किसी जवान ने ये गीत गाया था जो पिछले दिनों पे बहुत पॉपुलर हुआ था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, बस इतनी सी है इस दिल की आरजू। तो क्या एक जवान ही होता है जो देश की रक्षा करता है? लेकिन अगर वो इस मिट्टी में खप जाने के लिए तैयार है, तो हम देशवासियों को भी इस मिट्टी को, इस जल को बचाने के लिए कुछ संकल्प लेने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज के इस सेशन में हम सभी ये जरूर संकल्प लें कि इतनी जो विस्तृत माहिती है वो हम सबको इसलिए दी जा रही है क्योंकि हमें प्रैक्टिकल में इस दिशा में काम करना है। तो कहते हैं, हम है मुसाफिर, वक्त हम सफर है, हम है मुसाफिर, वक्त हम सफर है, रास्ते हजारों है परंतु मिट्टी ही मंजिल है। अंत में भी जिसकी शरण लेनी है वो ये मिट्टी ही तो है, तो क्यों नहीं उस 6 फीट जमीन के लिए ही सही हम मिट्टी की सेवा तो आज से अवश्य करेंगे। धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करती हूँ भ्राता बाबू चंडेल जी, जो कि श्योपुर के विधायक महोदय हैं, और अपनी शुभकामनाएं आज इस सेशन में हम सबके बीच में रखेंगे। भ्राता बाबू जी चंडेल,
आज माउंटाउन में ब्रह्मपुरी संस्थान में जो सर्वांगीय विकास का आधार शाश्वत यौगिक खेती और जल स्तर पे और भूमि स्तर पे जो हमारे बुद्धिजीवों ने अपना अनुबोधन में प्रकाश डाला, हमारे सर्व मंच में सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। हमारी बहन जी की पूर्व वक्ता ने जो बताया वो बहुत अच्छी बातें थी डॉक्टर साहब इंजीनियर ने, और हमारे सब संस्थान के साथियों, मैं पहली बार इस स्थान पर आया हूँ तो मुझे राह से ओम शांति की ऐसी भभूति दिल में पैदा हो रही है कि मैं सत्य के युग में बैठा हूँ। मैं प्रतिनिधि के नाते जो जल स्तर और भूमि जल संरक्षण के बारे में जो ये मंच है, ये 5 तत्व से शरीर बना और 5 तत्व जल भूमि जंगल जमीन ये राष्ट्र की रक्षा करता है। इसी से ही मानव का जन्म हुआ 5 तत्वों से। सबसे इस आश्रम में मैंने देखा कि यहाँ जितने भी बुद्धिजीव साथी मिले कोई पत्रों को नहीं ढोक रहे हैं, आध्यात्मिक खोज में लगे हैं। ओम एक हृदय ही मंदिर है और मनुष्य का कर्तव्य है कि राष्ट्र की सेवा करना। मैं 2004 में जिला पंचायती का चेयरमैन बना था, तो जब केंद्र सरकार ने मनरेगा चलाई तो पहले मीटिंग में मैंने जो बरसात का पानी अपनी जमीन को तोड़ के बाहर नालों में बहता था, उसका दुरुपयोग होता था, जमीन कटती थी, उससे मैंने मीटिंग में एक निर्णय लिया कि जो किसान 15 बसुआ 100 बाई 200 में जो अपना कुआं बनाएगा तालाब टाइप का, उसको हम 1,00,000 रुपया देंगे, सब्सिडी देंगे, जिससे उसकी मजदूरी का पैसे भी मिले, शरीर मजबूत हो और गांव का पानी गांव में तक रहे। इसी योजना से मैंने हर गांव में ये शिविर लगाया और हमारी श्योपुर से ब्रह्मा कुमारी दीदी को मेरे 3-4 साल से प्रेरणा मिली। ये सत्संग हमारे जिला में चलाते हैं, महिला को जागरूक करती है और इनसे मेरी इच्छा थी कि मुझे भी वहाँ माउंट आबू दिखाओ, और जो हम महापुरुषों की किताब पढ़ते हैं तो उसे कुछ अनुभव हुआ। तो खेतों का हमने हर खेतों में पानी का बनाया, उससे मेरा जिला के अंदर 35-40 गांव ऐसे थे जो किसानी तो दूर की बात मगर पानी पीने का नहीं था गांव, तो उससे जल स्तर बढ़ा, उनको सब्सिडी से रोजगार मजबूती मिली और आज उस 40 गांव में अच्छी गेहूं की खेती होती है, सरसों की खेती होती है। आज ये राष्ट्र में जो अपनी माता है, माता कहते हैं, एक माता जन्म देती है वो होती है, एक माता ये धरती है जो अपन को जीवित रखती है, अनाज खिलाती है, सब कुछ देती है, एक माता गौ माता होती है जो अपन को गोबर देती है जिससे पौधा और सब्जियां तैयार होता, गौमूत्र से हजारों बीमारियां मिटती है, उसके जो बछड़े होते हैं उस हल से अपन खेती करके अन्न पैदा करते हैं वो भी गौ माता है। उसमें मैंने 16 गौशाला तैयार की और 2019 में कमलनाथ जी से मैंने इस गौ माता के ऊपर में बोला विधानसभा में, तो 20 रुपये प्रति गौ का सरकार ने दिया था, तो इसमें एक गांव के लोगों को उत्साह बढ़ा, जो लावारिस गौ थी वो पालने लग गए। आज वो योजना सरकार बदलने से वो ठप हो गई, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि गौ माता की अपन रक्षा करेंगे तो गौ माता में जो 36 देवी देवता होते हैं वो ये सब अंधकार है, वो जो उसकी मेन चीज दिख रही है कि इसका दूध उपयोगी है, बछड़ा से अपन कमाई करते हैं, इसका खाद गोबर काम आता है और उसका जो मूत्र है उसे साइंस विज्ञान ने भी, और मैंने भी खुद ने, मेरे कैंसर जैसा मामला था और एलर्जी थी, काफी दिल्ली जयपुर काफी जांच करवाए मेडिकलों पे, मैं ठीक नहीं हुआ, ये सब महसूस हो रहा था परिवार को कि ये ठीक नहीं हो पाएगा। मैं गोमूत्र को उपयोग किया, 3 महीना में आज 15 वर्ष हो गया मैंने डॉक्टर नहीं देखा, कोई गोली नहीं खाई, ये गौमूत्र की कला है, किसी संत ने मुझे बता दिया। जब परेशान होके सब कुछ जांचे, तमाम पैसे लगा के, हताश एक मौत होती तो मैं हताश नहीं हुआ, किसी संत से पूछा कि बाबा इसका उपयोग क्या है, तो उसने गौमूत्र बताया। तो जितना कड़वा चाहे नीम हो या गौमूत्र, जितना कड़वा होता है उतना ही उपयोगी होता है। तो ये जल संरक्षण में के लिए फिर नाला का पानियों का दुरुपयोग हुआ कि चंबल नदियों का पानी फालतू समुद्र में जाता है, नदियां जितनी जाती है वो पानी समुद्र में जाता है। तो एक प्रोजेक्ट 50 गांव में भी ऐसी स्थिति थी, तो 400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट जल का उठा के, जो पहले बड़ा होते हैं कच्चे उसे किसान पानी देते हैं तो दुरुपयोग करते हैं, नहर को काटते हैं, पानी वेस्ट होता है, फिर वो 400 करोड़ का प्रोजेक्ट करके मैंने जिला में, अभी वो कार्य चालू है, एंड का 23 में या लास्ट का 24 में वो चालू हो जाएगा। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ मंच में हमारी दीदियों दीदी सम्मानियों को, और हमारे श्योपुर से ब्रह्म कुमार जी आई, कि मेरा जिला में भी एक आपका ऐसा कैंप लगे हमारे संस्था का, जिससे हमारा मध्य प्रदेश भी जागरूक हो। वहाँ की सरकार को भी मैं आमंत्रण करूँगा, और मध्य प्रदेश में जंगल काफी लंबा चौड़ा है, मेरा जिला का 85% भाग जंगल में है और 15% ही प्लेन जगह पे है, जंगल अधिक है, जड़ी बूटियां काफी है, जड़ी बूटियों का प्रोजेक्ट भी आज की तारीख में ठप है, और अंग्रेजी दवाइयां और हमारी जो जमीन है वो केमिकलों ने बिल्कुल खत्म कर दी, अब 2 इंच तक की जमीन खत्म हो चुकी है, उसमें कोई खेती नहीं हो रही है। जो स्प्रे करते हैं जेर में जिससे वो घास उगता है वो खत्म हो गया, क्योंकि जमीन में ताकत ही नहीं रहेगी, जैसे सिर का बाल है वो उठ जाते हैं, तो वो बीमारी नहीं है। वो किसी किसी कारण, कोई कमी के कारण ही वो बाल खिरते हैं। ऐसे ही वो हमारी जमीन को गंजा कर दिया इस केमिकल। आने वाले समय में आदमी की जिंदगी नहीं है। शाम की नमस्कार करते हैं, सुबह पता चलता है कि श्रीमान जी सुबह चाय पी रहे थे, तत्काल दो मिनट में चले गए। ये कोई इसलिए इसका नाम कलयुग है, कल का युग। ये पूरी तरह से अपना प्रदूषण गंदा हो चुका है। खेती के बारे में मैं एक महिलाओं को मैंने जागरूकता दी कि एक सम्मान से जागरूकता बढ़ेगी, तो जो महिला अपने घर में सब्जियां पैदा करेगी, लौकी का बीज दिया, अपने लौकी का तौरिया का बीज दिया, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, जो करेंगे तो थोड़ा एक प्लॉट में अपना परिवार की सब्जी नहीं बीजती है। जिन महिलाओं ने वो किया, मैं 11,000 उनको पुरस्कार देता हूं, उस महिला को बुला के या उसके मैं घर पे जाता हूं, जिससे वो जागरूक हो। जब वो सब्जी को खाने के लिए मैं बैठता हूं, फिर रोटी की जरूरत नहीं है, इतनी मटर स्वादिष्ट लगती है, उस सब्जी से पेट भर जाता है, एक एक डेढ़ किलो सब्जी खा जाता है। ये चीजों को आप उपयोग करेंगे, और मैं मानता हूं कि सरकार के पास काफी खजाना है। प्रतिनिधि चुनके पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, बोलते हैं तो कुत्ते लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं, राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते। वो इसकी माँ ऐसी है, उसकी माँ ऐसी है, वो ऐसी है, ये बकरी है, वो है। ये देश का लोकतंत्र जो चुन के बेचते हैं कि इस देश की रक्षा करेगा, राजा बनेगा, ये पैसे किस उपयोग में जाना चाहिए, देश के लिए क्या खतरा है, वो आज का राजनेता उस चीज को, संस्कृति को भूल गए। मात्र वो लड़ाई और कागजों में योजना बना देते हैं, वो 90% भ्रष्टाचार में जाता है, 10% ही वो उपयोग होता है, वो भी नहीं हो पाता। केमिकल विकास, जिस चीज की आप बात करते हैं, विकास जो विकास के लिए योजना बनाते हैं वो विनाश की योजना बना रहे हैं, वो विकास नहीं है। गाड़ी बनाई 200 किलोमीटर की स्पीड की, वो विनाश है। आज मुझे बड़ा दुख है, शोक सभा व्यक्ति या दीदी ने करवाया, गाड़ी से 200 आदमियों की जान चली गई। ये विकास भी है तो विनाश भी है। विकास तो वो है जो आज इस मंच पे चर्चा हो रही है कि धरती माता है, जल संरक्षण कैसे बचाना है, भूमि को किसने बर्बाद किया है। मैं दोषी मानता हूं तो आज की सरकारों को दोषी मानता हूं, जो हमारे राष्ट्र को संस्कार नहीं दे रहे हैं। और विज्ञान जो है, तकनीकी है, उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। हमारी कृपया, मैं समय को सभी भाइयों को धन्यवाद, और समय ज्यादा बोल गया, और दीदी से भी मैं आज्ञा करता हूं कि मेरा मध्य प्रदेश में, मेरा जिला में ऐसा कोई शिविर लगे 2 या 3 दिन का, तो मध्य प्रदेश के लोगों को बुलाएंगे, सरकार को बुलाएंगे, और ये देश को बचना चाहिए। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।
धन्यवाद। मध्य प्रदेश में ऐसा कार्यक्रम आप जब भी बहनों को निमंत्रण देंगे, आप आयोजन करेंगे, तब जरूर बहनें आकर के करेंगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि इसके बाद का भी एक सेशन हम सबको यहाँ पर मिलना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए समय पर हम पूरा कर रहे हैं। अभी हम आज की इस विषय पर आध्यात्मिक पक्ष रखने के लिए अपने लंबे काल के आध्यात्मिक अनुभवों को संजोए हुए हमारे बीच उपस्थित आध्यात्मिक जगत की विशेष हस्ती ब्रह्म कुमारी लक्ष्मी दीदी को बुलाना चाहेंगे। आप सोनीपत रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर हैं, बचपन से ही राजयोग की अभ्यासी रही हैं, और पंजाब जोन की आप ज्यूरिस्ट विंग की भी कोऑर्डिनेटर हैं। अपने आध्यात्मिक पुट को हम इस विषय पर कैसे डालें, आदरणीय दीदी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पर उपस्थित कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग से संबंधित सभी महानुभाव एवं सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आज के विषय को बहुत सुंदर ढंग से, बहुत विस्तृत रूप से और बहुत ही अनुभव युक्त तरीके से हम सबके सामने रखा है। हमारी प्रियंका बहन जो छोटी सी दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े और बड़े अच्छे ही अनुभव युक्त विचार उन्होंने इस संबंध में अपने अनुभव से रखे हैं। और साथ में हमारे विष्णु भाई जी ने भी उनकी जो और कमी थी वो पूरी कर दी, और विशेष हमारे भ्राता डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से इस विषय को स्पष्ट किया है, और भ्राता बाबू चंडेल जी ने भी बहुत सुंदर भावनाएं व्यक्त की हैं। मैं इस विषय को जल संरक्षण से मृदा संरक्षण, एक दूसरे पहलू से, स्पिरिचुअल पहलू से भी कुछ बताना चाहूंगी। हम सभी ये जानते हैं कि ये प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। सचमुच में प्रकृति के पांचों तत्वों के हम सभी बहुत बहुत ऋणी हैं। वायु, जिसके बिना हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, पानी, जिसके बिना जीवन ही असंभव है, और भूमि, जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमें अनेक प्रकार के खाद्यान्न देती है, हमारे टिकने का आधार है, तो वृक्ष, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और बहुत सारी बहुमूल्य निधि उनके अंदर छिपी हुई है। और हम ये भी देखते हैं कि ये सभी तत्व हमें सब कुछ फ्री देते हैं। इस पूरे विश्व को 38 ट्रिलियन डॉलर्स ऑक्सीजन, इतनी कीमत की ऑक्सीजन 6 मास पे जो मानवता के लिए जरूरी है, वो वृक्ष हमें बिल्कुल फ्री देते हैं। तो ऐसी प्रकृति जो हमें देती ही देती है और उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगती है, तो हमारा भी उसके प्रति कितना कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि हम उसके प्रति एक दिल से प्यार रखें और जो कुछ भी हमसे बन पाए हम उसके प्रति अवश्य करें। क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि मदर अर्थ है सफिशिएंट फॉर मैन्स नीड बट नॉट फॉर मैन्स ग्रीड। इस धरती माँ के पास मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ है, लेकिन उसके लालच की पूर्ति नहीं कर सकती, और उस लालच के कारण ही आज मिट्टी को, जल को, वायु को, सबको प्रदूषित कर दिया है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार एक चावल का ट्रक भरा हुआ था, बोरे भरे हुए थे उसके अंदर, और एक बोरा खिसक के नीचे गिर गया। कुछ चींटियां आई, उन्होंने 2-4 चावल के दाने उठाए और चली गई। उसके बाद कुछ चूहे आए, उन्होंने भी कुछ थोड़े से दाने खाए और चले गए। फिर कुछ पक्षी आए, उन्होंने भी कुछ दाने खाए और उड़ गए। फिर एक गाय आई और उसने भी 1-2 किलो चावल खाया होगा, उसके बाद चली गई। फिर एक मनुष्य आया, उसने बाकी बचा हुआ पूरा बोरा अपने साथ ले गया। तो देखिए, प्रकृति के अंदर सभी जीव केवल आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, लेकिन एक मानव है जिसका लालच कभी पूरा नहीं होता, और उसी के कारण भूमि को, वायु को, सारे एनवायरमेंट को प्रदूषित कर दिया है केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसलिए ऐसी प्रकृति के प्रति, ऐसे तत्वों के प्रति जो हमें बहुत कुछ देते हैं, अगर कुछ क्षण के लिए भी वो स्ट्राइक कर दे, हवा कहे कि मैं मानव को नहीं दूंगी ऑक्सीजन, वृक्ष कहे हम नहीं देंगे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं हम, तो इस मानव का क्या हाल होगा, सोच सकते हैं, कुछ क्षण के लिए भी उसका जीवन दुभर हो जाएगा। तो ऐसी प्रकृति के प्रति विशेष प्रेम, वृक्षों के प्रति, जल के प्रति, वायु के प्रति हमारा बहुत ऐसा स्नेह हो, और उसके प्रति हम छोटे छोटे कदम भी उठाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक परिवार पूरे वर्ष भर के अंदर उसके लिए 6 वृक्षों की लकड़ी, कागज और अन्य उसकी सुविधाओं के लिए हर वर्ष वो प्रयोग करता है, लेकिन कभी सोचता नहीं है कि मैं कितने वृक्ष लगाता हूं। तो इसलिए आवश्यकता है हर मानव को, एक व्यक्ति जब इस दुनिया से विदा होगा, एक वृक्ष की लकड़ी उसे उस दिन भी चाहिएगी। तो इसलिए ये सोचना होगा कि हर परिवार को और परिवार में जितने सदस्य हैं, कम से कम उतने वृक्ष तो अवश्य लगाएं, और केवल लगाएं नहीं लेकिन उनका पोषण करें, संरक्षण करें, उनकी संभाल करें। साथ साथ जल से संबंधित बहुत सारी चीजें आज हमने सुनी है। जल के जो संसाधन हैं वो इस विश्व के अंदर बहुत सीमित हैं, बहुत सीमित। अभी हम देख रहे थे 1% से भी कम ऐसा पानी है जिसे हम जीवन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो उसे बचाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो उस जल के संरक्षण के लिए भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और हम अपनी छोटे छोटे क्रियाकलाप जो हैं उसके अंदर हम पानी को बचा सकते हैं। ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय नल का खुला ना छोड़ें। शैम्पू का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि ज्यादा शैम्पू, ज्यादा झाग, ज्यादा पानी, तो इसलिए इन चीजों का हम जीवन में कम प्रयोग करें। ये हम एक छोटी छोटी बचत करके भी पानी की हम बहुत बचत कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वृक्ष से संबंधित मुझे एक बात याद आती है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर आज दिन तक भी एक रस्म है कि जब कोई कन्या शादी होकर के अपने ससुराल में जाती है तो एक प्रथा होती है जिसको मैती प्रथा कहते हैं, जिसमें वो एक पौधा लेकर के जाती है और वो जाकर के अपने ससुराल में आरोपित करती है। उसके पीछे एक भावनात्मक पक्ष तो ये है कि उसे ससुराल में जाने के बाद मायके की कमी महसूस नहीं होती, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि वृक्ष एक बहुत बड़ी संपत्ति है। जब दहेज दिया जाता है तो उसमें एक वृक्ष भी, एक पौधा भी दिया जाता है, तो वो एक संपत्ति है बहुत बड़ी जीवन की, जो उस घर में उसे बहुत काम आएगी। और वृक्षों को महत्व देने के लिए भी ऐसी प्रथाएं बनाई गई हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने एक चिड़िया पाली लेकिन कुछ दिन के बाद वो उड़ गई, फिर मैंने एक गिलहरी पाली लेकिन एक दो दिन के बाद वो भी भाग गई, फिर मैंने एक वृक्ष लगाया तो वो दोनों वापस आ गई। तो कहने का भाव है कि वृक्ष कितना महत्वपूर्ण है, और इस प्रेम को बढ़ाने के लिए, प्रकृति के प्रति हमारा ये प्रेम भाव बढ़े, उसके लिए हमें स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की बहुत जरूरत है, क्योंकि अध्यात्म ही एक सच्चा प्रेम, सच्ची खुशी, सच्ची शांति जीवन में भर सकता है। कई बार कुछ भाई बहनें सोचती हैं कि शायद ये जो स्पिरिचुअलिटी की बातें करती हैं ये कोई अलग जीवन है, लेकिन ये कोई अलग जीवन पद्धति नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ही जीवन है। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं आप सभी भी स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आपको प्यार, शांति और सुख पसंद है, और ये हमारी आत्मा जो स्पिरिट है, जो एक एनर्जी है, एक ज्योति है, उसके अंदर ही ये 7 गुण हैं, और जब हम इन गुणों के साथ बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, तो वही स्पिरिचुअलिटी है। वो कोई अलग चीज नहीं है जिसके लिए घर बार संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने हर कर्म में, प्रकृति के साथ भी हर कर्म में, एक स्टूडेंट अगर है तो वो अपनी स्टडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन करे, वो अपने व्यसनों से मुक्त हो जाए, यही स्पिरिचुअलिटी है। एक डॉक्टर एक प्रेम भाव से तन के साथ साथ मन की राहत भी अपने रोगियों को देता है, ये स्पिरिचुअलिटी है। एक किसान जो प्यार से बीज बोता है उस फसल को भी योगदान देता है, प्रभु स्मृति के अच्छे वाइब्रेशन देता है, यही स्पिरिचुअलिटी है। तो हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में रहते हुए स्पिरिचुअल हो सकता है, बन सकता है, जिससे अपने जीवन और प्रकृति दोनों को ही फायदा होता है। और जब हम स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को, मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो जीवन के अंदर संतोष आता है, और जब संतोष आता है तो हम प्रकृति का दोहन नहीं करते हैं, प्रकृति को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, उसके प्रति प्रेम पैदा होता है, उसके प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं उनका हम सदुपयोग करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी जीवन पद्धति को अपनाकर अपने जीवन को भी अच्छा बनाना है और अपनी प्रकृति को भी अच्छा बनाना है, इस विश्व के वायुमंडल को भी अच्छा बनाना है, ताकि ये धरती माँ फिर से सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम बन जाए। ओम शांति।
उत्तम मार्गदर्शन और हमें अपने कर्तव्य का बोध कराया है आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी ने। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। स्पिरिचुअलिटी की व्याख्या हमने बहुत सरल शब्दों में आपसे जानी है और दो दिन तीन दिन के बाद में ही पर्यावरण दिवस आ रहा है, तो हम सभी जरूर वृक्ष उगाएंगे, जल बचाने की प्रतिज्ञा करेंगे, मिट्टी की सेवा की प्रतिज्ञा करेंगे। इस सेशन की समाप्ति से पहले मंचासीन हमारे अतिथियों को संस्थान की तरफ से सौगात अर्पित करेंगे आदरणीय दीदी, और हम भी साथ साथ अपने आप को जो ज्ञान की सौगात मिली है उससे भरपूर करते हुए और सदा इसे संजोत कर ले जाने का संकल्प करें, अपने साथियों को, अपने ग्रामवासियों को और अपने समस्त परिवारजनों को भी ऐसे शुभ कार्य से जोड़ेंगे। श्योपुर से पधारे हुए विधायक महोदय, पहले दीदी ने पंकज जी त्रिपाठी को सम्मानित किया, अंत में दो मिनट प्रभु स्मृति के बाद यहाँ 12 से 1 बजे तक का डॉक्टर प्रेम मसन जी का सेशन है, जो बहुत ही आपको आत्म लाभ देगा। और दो मिनट प्रभु स्मृति में हम सब बैठेंगे। जो कृषि वैज्ञानिक और कृषि अधिकारी जी पहुंचे हैं वे सभी 12 से 1 का सेशन अटेंड करने के बाद भी यहाँ बैठेंगे, उनके लिए कुछ आवश्यक कार्य है। और जो किसान खेती करने वाले हैं वो इस सेशन के बाद में भ्राता महेंद्र भाई जो कि यहाँ पर बैठे हैं, आप जरा बता दें, तो उनसे जरूर मिल लें, ये बात का ध्यान रहे। केवल दो मिनट। परमात्मा का धन्यवाद, सभी वक्ताओं का दिल से धन्यवाद, और अपने अंदर फिर से वो शांति की शक्ति भरेंगे दो मिनट प्रभु स्मृति के साथ। ओम शांति।